बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात का नतीजा और हिंद पाक ताल्लुकात के ज़ेरे उनवान। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़। नाज़रीन, हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात का नतीजा कई लिहाज से काबिल गौर है। सबसे बढ़कर यह कि 1984 के बाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी एक पार्टी को वाज़ह अक्सरियत मिली है, और एनडीए को मद्देनज़र रखा जाए तो बीजेपी की क़यादत में इस इत्तेहाद को तकरीबन 2/3 नशिस्तें मिली हैं, और इसके मुकाबले में किसी भी जमात को इतनी भी नशिस्तें नहीं मिल सकी हैं कि वो अकेले हिज़्ब इख्तलाफ होने का दावा कर सके। जाहिर है कि इस सूरत हाल में फैसले करने और उन पर अमल दरामद में हुकूमत को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी नरेंद्र मोदी की क़यादत में कायम होने वाली हुकूमत मुस्तहकम, मुक्तदर और बाख्तियार होगी, और इसके नतायज अंदरून मुल्क भी जाहिर होंगे और हिंदुस्तान के खारजा रवाबित में भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। इस दरमियान पड़ोसी मुल्कों की हुकूमतों की निगाहें भी हिंदुस्तान पर मरकूज़ हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से खदशात और तहफ़ुज़ात भी पाए जाते हैं और उम्मीदों का इजहार भी किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम पहले हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात के नतीजे पर पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती हलकों के तासुरात जानने की कोशिश करेंगे, इसी के साथ उनके खदशात और तहफ़ुज़ात का भी जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके खदशात और तहफ़ुज़ात की बुनियाद क्या है। आज के प्रोग्राम में इस बात पर भी गुफ्तगू होगी कि हिंदुस्तान के ऐवान इख्तदार में भारतीय जनता पार्टी के पहुंचने से रिवायती हरीफ और अहम तरीन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ताल्लुक से नई दिल्ली की पॉलिसियों में क्या मुमकिन तब्दीली आ सकती है। पार्लिमानी इंतखाबात का नतीजा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन सभी छोटे बड़े रहनुमाओं ने बयक ज़बान कहा था कि अब अच्छे दिन आ गए। हिंदुस्तान के अंदर इसकी ताबीर ये की गई है कि इससे मुराद ये है कि बीजेपी इत्तेहादी जमातों, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अवाम के अच्छे दिन आ गए। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन अच्छे दिनों में पड़ोसी मुल्कों, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भी हिस्सा होगा या नहीं, यानी इन अच्छे दिनों में पड़ोसियों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर पड़ने वाले असरात भी अच्छे होंगे या नहीं। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
हिंदुस्तान के लोकसभा इंतखाबात में इंतहा पसंदाना ख्यालात के मालिक कहे जाने वाले रहनुमा नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी को कामयाबी मिली और इख्तदार इस पार्टी के हाथ में आ गया है। हिंदुस्तान के सियासी मैदान में इस तब्दीली के बाद हिंद पाक ताल्लुकात के मुस्तकबिल के सिलसिले में कयास आराइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी आइंदा 26 मई को वजारत वज़मा का हलफ लेंगे और इस तकरीब के लिए तकरीबन 3,000 अहम हस्तियों को मदऊ किया गया है, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अभी नवाज शरीफ का दौरे हिंदुस्तान तय नहीं किया गया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जमान तस्नीम असलम ने हिंदुस्तानी मीडिया को बताया कि पाकिस्तान को मोदी की तकरीब हलफ बरदारी का दावतनामा मौसूल हो गया है, ताहम अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरे हिंदुस्तान तय नहीं किया गया। इस बारे में कयास आराइयां कबलस वक्त हैं। अलबत्ता इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में जिस जमात की भी हुकूमत बने वो नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि बीजेपी मसले कश्मीर और पाकिस्तान के सिलसिले में सख्त मौकिफ रखती है और पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में कुछ हलकों ने तहफ़ुज़ात का इजहार भी किया है। हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत के दौर में हिंद पाक रिश्तों में कुछ मुस्बत तब्दीलियां हुई थीं। अटल बिहारी वाजपेयी का बस के जरिए अंजाम पाने वाला लाहौर का सफ़र एक संगे मील समझा गया, جبکہ پاکستان کے سلسلے میں ان کا یہ بیان آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں پڑوسی نہیں۔ ان حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی نئی حکومت کے دور میں بھی ہند پاک رشتوں میں بہتری آ سکتی ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت بدنامی کی حد تک یہ شہرت رکھتی ہے کہ وہ ہندوستان سے اچھے رشتے کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم اس معاملے میں تحفظات کی اہم وجہ خود نریندر مودی کی ذات ہے۔ اٹل بہاری واجپئی بے شک بی جے پی کے ہی رہنما تھے، مگر ان کے سیاسی کیریئر کو کافی حد تک اعتدال پسند سیاسی رہنما کا کیریئر مانا جاتا ہے، جبکہ نریندر مودی اپنے انتہا پسندانہ اور مسلم مخالف نظریات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نریندر مودی نے انتخابی مہم کے دوران زیادہ تر داخلی مسائل اور ترقی کے ماڈل کی بات کی، خارجہ پالیسی پر انہوں نے بہت کم بیانات دیے۔ مودی نے بہت کم مواقع پر چین، پاکستان یا بنگلہ دیش کا ذکر کیا، البتہ انہوں نے جاپان کی بڑی تعریف کی اور ہندوستان کی اقتصادی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں جاپان سے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خارجہ پالیسی کے سلسلے میں ان کے رجحان کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب وہ وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کا انتخاب کریں گے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مودی پہلی دفعہ گجرات سے باہر ہندوستان کی مرکزی حکومت میں پہنچے ہیں، بے شک انہیں عالمی حالات کو سمجھنا ہوگا اور اس حقیقت کا بھی ادراک کرنا ہوگا کہ سب کچھ ایک طرفہ طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ عالمی برادری کو مد نظر رکھ کر بہت سے رجحانات کو نرم اور بسا اوقات ترک کرنا پڑتا ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ہندوستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار وید پرتاپ ویدک، اور اسلام آباد سے پروگرام میں شامل کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر رفیق رجوانہ کو۔ بہرحال ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت، یعنی بی جے پی پارٹی نے واضح اکثریت سے ایوان اقتدار میں قدم رکھا ہے، اور 26 مئی کو نئی حکومت کی تقریب حلف برداری منعقد ہوگی، اور جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، اس تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پہلی بار ہندوستان میں بیرونی مہمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور محدود سطح پر ہی صحیح، لیکن سارک کے رکن ملکوں کے سربراہوں کو اس تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ، اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز سیاسی رہنما مسلم لیگ نون کے رکن سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب سے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رجوانہ صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب، شکریہ جناب دعوت دینے کا۔
جناب، ہندوستان میں ایک 10 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آ رہی ہے، اس سلسلے میں پاکستان کے اخبارات میں جو مضامین اور جو کالم ہم نے پڑھے ہیں، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی صحافتی برادری میں خاص طور پر کچھ خدشات اور تحفظات پائے جاتے ہیں۔ یہ خدشات اور تحفظات پاکستان میں عوامی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں، یا جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کالم نویسوں نے کیا ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے؟
دیکھیں، کالم نویسوں نے جو اخباروں میں اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اچھے شگون کا بھی اظہار کیا،
یقیناً
ٹھیک ہے نا؟ تو اس دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو جو خدشات اور تحفظات ہیں، اس میں یہ الیکشن کے دنوں میں بی جے پی نے جو نعرے لگائے، اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ اینٹی مسلم وہاں باتیں کی گئیں، تو بطور مسلمان ملک کے ہمارے کچھ تحفظات اس الیکشن کے حوالے سے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے خدشات بھی تھے۔ مگر ابھی جیسے آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا بتا رہے تھے، اٹل بہاری واجپئی صاحب نے وہ دوستی بس کا سفر کیا پاکستان میں، تشریف لائے، مینار پاکستان میں آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوستی بس کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو اور جو ایشوز ہیں، کور ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف بھی ہم بڑھ سکتے تھے، بڑھتے، مگر حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ بات پھر آگے نہ بڑھی۔ جہاں تک یہ عوامی جذبات کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ حق بجانے میں ہیں بطور مسلمان اور بطور پاکستانی کے خدشات رکھنے کے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے جناب نریندر مودی صاحب کی کامیابی پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کو مبارکباد بھی دی اور پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، جو ایسی ایک شروعات تھی جناب محترم میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ اس شروعات کے حوالے سے انہوں نے پہلے یہ سٹیپ لیا، تو اس سے ایک اچھا جو ہے نا میسج گیا، ایک اس کا سودنگ ایفیکٹ ہوا اس کا جو ہے، اس سے یہ میں سمجھتا ہوں اس دعوت کے بعد نریندر مودی صاحب نے اپنی حلف وفاداری کی تقریب پر پاکستان کو سارک ملک کے رکن ہونے کے حوالے سے دعوت دی اور دعوت نامہ موصول بھی ہو گیا. ابھی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس دعوت نامے کے بعد جو ہے اپنی مصروفیات اور باقی چیزیں جو بھی ان کی پرائیورٹیز ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ نریندر مودی صاحب کی حکومت کامیاب ہو، اور جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے اور پریس میں فوراً پریس میں بھی آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ تقریباً کوئی 35 ملکوں کے اف آئی ایم ناٹ رانگ کے سربراہان مملکت کو اس تقریب کی دعوت دی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کوئی آئسولیشن میں نہیں رہنا چاہتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہندوستان دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور صاف ظاہر ہے آج کل کوئی ملک بھی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو کے نہیں رہ سکتا. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ لائن آف کنٹرول کا مسئلہ ہے، مثلا ہمارا ہم جو کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق رائے دیا جائے، ان کو یہ آزادی دی جائے اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ کر لیں. یہ ہمارے دو بڑے ایشوز ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری حکومت ٹریڈ میں بھی انٹرسٹ رکھتی ہے، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں جو گجرات کے حوالے سے وہاں انہوں نے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنایا، اتنی ترقی دی گجرات میں، اتنی نوکریاں دی، جاب اپرچونیٹیز ہوئیں، جس کی بنا پر اس اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے لوگوں نے ان کو اتنی بھاری اکثریت سے جو ہے 1 کروڑ نیا ووٹر بھی جوان شامل ہوا، اور ان کو بھاری اکثریت سے بغیر کسی کے محتاجی کے ان کو 2/3 اکثریت کے قریب مل گئی اور آسانی سے حکومت بنا سکیں گے. اور میں ابھی پریس میں پڑھ رہا تھا فورن پریس میں، تو یہ بھی تھا کہ وہ اب انڈیا کے لوگوں نے اس لیے ان کو زیادہ ووٹ بھی دیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک بگر گجرات دیکھنا چاہتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد نریندر مودی صاحب نے کوئی پاکستان کے بارے میں، بنگلہ دیش کے بارے میں، چائنا کے بارے میں، کوئی زیادہ ان معاملات میں، خارجہ امور کے بارے میں اپنے الیکشن میں جو میری حد تک علم ہے
جی
انہوں نے کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کنفائنڈ رکھا، اپنے آپ کو زیادہ محدود رکھا انڈیا کی ترقی پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے کاروباری لوگوں نے بھی ان کا بڑا ساتھ دیا، اور ہندوستان کے کاروباری لوگوں نے یہ بھی ساتھ اس لیے بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے جو ایک لبرل پالیسی ہے، اکنامک لبرل پالیسی، اس کی وجہ سے پاکستان کی تجارت بھی بڑھے گی، اور ہم بھی پاکستان کی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے گفت و شنید سے اور ڈائلاگ سے، کمپوزٹ ڈائلاگ سے کرنا چاہتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور وید پرتاپ ویدک صاحب موجود ہیں. ویدک صاحب آداب عرض ہے.
سلام کرتا ہوں.
جی میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ویدک صاحب. ویدک صاحب بہرحال ہندوستان میں ایک بھارتی جنتا پارٹی نے ایک تاریخی فتح اپنے نام رقم کی ہے، اور 26 مئی کو نئے وزیر اعظم اور نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری ہے. اس سے پہلے ہندوستان میں وزیر اعظم اور مرکزی کابینہ کے اراکین کی جو تقریب حلف برداری ہوا کرتی تھی، اس میں دیگر ملکوں کے سربراہان مملکت کو شرکت کے لیے نہیں بلایا گیا، لیکن اس بار محدود سطح پر ہی صحیح، لیکن بہت سے سربراہان مملکت کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو نریندر مودی صاحب ہمارے وزیر اعظم بننے والے ہیں، بہت پہلے سے ایک تقریر میں ان کے سامنے ہی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جن کو انگریزی میں سارک کہتے ہیں اور ہندی میں دکشیش کہتے ہیں، دکشن ایشیائی क्षेत्रीय सहयोग संघ, इन सब मुल्कों के लोगों को और सारे हुक्मरानों को जोड़कर हमें यूरोपियन यूनियन से भी एक बेहतर तजवीज़ कायम करना चाहिए और उस पर नरेंद्र मोदी अब चल रहे हैं। अभी यूरोपियन कॉमन मार्केट की तरह कोई कॉमन मार्केट बनाना, कॉमन पार्लियामेंट बनाना, कॉमन कॉन्फेडरेशन बनाना ज़रा मुश्किल चीज़ है
जी।
हालांकि इसमें मियां नवाज़ शरीफ साहब की बहुत दिलचस्पी है। मियां नवाज़ शरीफ साहब से पिछले साल इन्हीं दिनों, बल्कि इन्हीं तारीखों में मैं पिछले साल मिला था इस्लामाबाद में, तो उनसे भी मैंने ये दरख्वास्त की थी। अब जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका सोच और मियां नवाज़ शरीफ का सोच बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दरिया दिली दिखाई, जो बहुत ही एक फराग दिली दिखाई कि भाई पड़ोसी मुल्क तो हैं लेकिन वो सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, वो हमारे कुटुंब कबीले के हिस्सा हैं और हम उनके हिस्सा हैं, तो हमारी खुशी में वो खुश हों, उनकी खुशी में हम खुश हों, उनके दुख में हम दुखी हों और हर तरह से हम उनके हमसाए की तरह रहें। ये एक बड़ा भारी मैसेज, ये एक पयाम नरेंद्र मोदी ने हमारे सब पड़ोसी मुल्कों को दिया है, और हामिद करज़ई साहब ने उनका दावतनामा कबूल कर लिया है। शेख हसीना भी, उनको जापान जाना है लेकिन शायद वो आ जाएं। जो राजपक्ष जी हैं श्रीलंका के, वो भी आएंगे
जी।
आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो दावतनामा दिया है इसमें कुछ तकलीफ़ भी हैं
जी।
जैसे कि उनके एक पार्टनर हैं NDA के पार्टनर वाइको साहब
जी,
वो श्रीलंका के राष्ट्रपति को, सदर को बुलाने के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह से जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की, वो शेख हसीना को यहाँ बुलाने के ख़िलाफ़ हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हमारे मुल्क में और हो सकता है नरेंद्र मोदी की पार्टी में जो मियां नवाज़ शरीफ को भी बुलाने के ख़िलाफ़ हों। वो ये कहें कि ये वही मियां नवाज़ शरीफ हैं जिनके ज़माने में करगिल हुआ था। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सब मुल्क, और मैंने तो ये सुझाव भी दिया है कि ईरान को बुलाना चाहिए, इन सारे मुल्कों में भारत के सबसे करीब और सबसे तहजीब और तमद्दुन के ख्याल से ईरान भारत के सबसे करीब है, वो एक आर्याई मुल्क है, ईरान को सबसे पहले दावतनामा जाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि पुराने सोवियत सेंट्रल एशिया के जो पांचों मुस्लिम रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, इन सारे जो स्थान हैं इन सबको भी बुलाया जाना चाहिए और मॉरिशस को भी बुलाना चाहिए। 16 मुल्कों के नेताओं को, रहनुमाओं को आज अगर वो आते हैं 26 तारीख को, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तंजीम का आगाज़ होगा और ये नरेंद्र मोदी करेंगे
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रजवाना साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में भी इशारा किया और ये हकीकत भी है कि नरेंद्र मोदी की जो इंतखाबी मुहिम थी वो मरकूज रही है, उसका जो बुनियादी स्लोगन और बुनियादी नारा था वो तरक्की और पेशरफ्त, और जाहिर है कि वो इस पर काम भी करेंगे। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये भी एक अच्छी अलामत है, इसलिए कि जो भी हुकूमत अपने मुल्क और अपने अवाम की तरक्की और पेशरफ्त के लिए काम करना चाहेगी वो यकीनन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कशीदगी नहीं चाहेगी, किसी भी तरह के तनाव से बचने की कोशिश करेगी, और उसकी कोशिश ये होगी कि पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके रवाबित ऐसे हों जिन्हें कशीदगी पर मबनी रवाबित ना कहा जाए।
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कशीदगी जो है, जिस तरह की तारीख है हमारी पुराने ऐसे ताल्लुकात की, स्ट्रेंड रिलेशंस की, कई दफ़ा यहाँ ऐसे मौके आए जिसमें के बहुत हालात ख़राब हुए, ताल्लुकात बहुत मुतासर हुए, उनसे सबक सीखना चाहिए और साथ साथ डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू सुनीद के ज़रिए जो दो मसाइल की तरफ मैंने मुद्देबाना निशानदेही की उनको भी सामने रखना चाहिए, जो अच्छी बात है। अभी जो प्रताप साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम ऐसे लोगों से सीखते भी हैं और बड़ी अच्छी बातें की हैं, यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी या अदरवाइज़ के इसका दायरा कार वसी किया जाए, ईरान को शामिल किया जाए। अभी रिसेंटली इनके शायद इर्मी होगा कि हम मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है एशियन पार्लियामेंट असम्बली के। अभी पिछले हफ्ते मैं टर्की गया हुआ था अनकरा, उसी पार्लियामेंट की दावत पर, वो भी एक सिम्बॉलिक है, मगर वो एक पूरे एशिया पर मुश्तमिल एशियन पार्लियामेंट असम्बली है, जिसका पिछले साल पाकिस्तान चेयरमैन बना हमारे सेनेट के चेयरमैन नैयर बुखारी साहब, उसके जो है ना चेयरमैन बने हैं 2 साल के। मगर जहाँ तक ये हिंदुस्तान के करीब हमसाया मुल्कों का ताल्लुक है, सार्क का ताल्लुक है, इनकी आपस में ट्रेड भी होनी चाहिए, आपस में कोई ऐसा जैसे सार्क का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इफेक्टिवली काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, और अगर खुदा न खास्ता हम इसको और जंग की नज़र कर दें और मामलात को सुलझाने की बजाय उसको तलखी की तरफ ले जाएं, तो इट इज़ नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजन। तो मैं समझता हूँ कि मैं अफगानिस्तान स्टेबल है तो उसका मतलब है पाकिस्तान मुस्तहकम है, हिंदुस्तान मुस्तहकम रहे पाकिस्तान मुस्तहकम है, तो ये ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जितने भी इख्तलाफी अमूर हैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन चीज़ों का मैंने पहले अर्ज़ किया उस पर हमारे तहफ़ुज़ात भी हैं, और हम वो कहते हैं वो कोर इशूज़ हैं, उनको टेबल पे बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीरीज वो हल किए जा सकते हैं और करने चाहिए। तो खुश आइंद बात है कि ये वाकई सही बात है कि अब इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है अब लोग उनकी तरफ रुझान दे रहे हैं और पुराने झगड़े लोग मिटा रहे हैं। हम भी चाहते हैं, हमारी दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारे जो पुराने जो तनाज़ात हैं वो ऐसे तरीके से मेज़ पर बैठ के कंपोजिट डायलॉग से जो है ना वो गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाए, और ताकि ये दोनों मुल्क मिल के तरक्की करें, मिल से मुराद ये कि एक दूसरे के साथ ट्रेड करें जो इनके दोनों मुल्कों के मफाद में है। और ये समझता हूँ नरेंद्र मोदी साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इस तरह के माहौल में इस तरह की कशीदगी में कमी भी करेगी और बेहतरी की तरफ भी हमें तवक्को है, इंशाल्लाह हम जाएंगे और दोनों मुल्क तरक्की भी करेंगे और ये रीजन भी तरक्की करेगा। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। जनाब पाकिस्तानी अखबारात के कालम ये गुज़श्ता दिनों एक हफ्ते के दौरान जो मैंने पढ़े हैं उनसे पता ही चलता है कि अलबत्त कुछ लोगों ने अच्छी उम्मीदें भी वाबस्ता की हैं कि नई हुकूमत से अच्छी उम्मीदें भी हैं, लेकिन अक्सर कालम नवीसों ने कुछ खदशात डर खौफ का इज़हार किया है, उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस का इज़हार किया है, और इसकी बुनियाद अभी रजवाना साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपसे रबते से पहले तो उन्होंने भी बताया और अखबार नवीसों ने भी पाकिस्तान के लिखा है कि उनके जो खौफ या उनके डर उनके जो रिजर्वेशंस हैं उसकी बुनियाद इलेक्शन कम्पेन के दौरान बाज़ बीजेपी लीडरों की जानिब से लगाए जाने वाले वो नारे हैं जिनमें पाकिस्तान की मुखालफत की गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी ये जो बात है मुझे पता है
जी,
पाकिस्तान के अखबारात और टीवी चैनल्स नरेंद्र मोदी के बारे में जो खौफ जाहिर करते हैं
जी,
जो शुबा जाहिर करते हैं वो उनका जाहिर करना वाजिब है
जी,
क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं और कुछ पुरानी बातें हैं जिसकी वजह से वो ऐसा ख्याल करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से बराबर मेरी बातचीत होती रही है इस पिछले 6 महीने में, कोई हफ्ता नहीं गुजरा कि जब उनके मेरे बीच बात नहीं हुई हो, और मैंने हमेशा ये पाया है पिछले 6 महीने में एक बार भी नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिससे मेरे मुल्क का कोई मुसलमान भाई नाराज़ हो जाए, या कोई ऐसी बात कही हो कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या कोई ऐसी बात कही हो कि जो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो। बराबर मुसलसल वो ये कहते रहे हैं कि ये मुल्क 125 करोड़ लोगों का है और मैं सबका खिदमतगार हूँ और मैं कोई फ़र्क लोग में नहीं करता हूँ, बल्कि हिंदू शास्त्रों का हिंदू जो पाक किताबें हैं उनको उन्होंने कोट किया और उसमें एक बहुत अच्छा लफ्ज़ आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी मैं हर इंसान को सुखी देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, कोई हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई या औरत मर्द का फ़र्क नहीं करता हूँ। हमको नरेंद्र भाई की इस बात में कुछ एतमाद करना चाहिए और उनको काम करने का मौका देना चाहिए। आदमी से कभी कभी अनदेखी हो जाती है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ही गलत काम हो जाता है, लेकिन कोई आदमी वो करता है मजबूरियों की वजह से, या वो मजबूरियों की वजह से हो जाता है। लेकिन कोई आदमी अगर बेहतर इंसान बनना चाहे, कोई आदमी एक ज़बरदस्त काम करना चाहे, तो उसको मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 30-35 साल बाद, और मैं तो आप ही के चैनल पर मैंने पिछली बार खूब डट के कहा था कि नरेंद्र मोदी को अक्सरियत पाने में कोई रोक नहीं सकता है, उनको ज़बरदस्त अक्सरियत मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनलों पर और अखबारों में मैं अकेला ऐसा इंसान था जो ये बात कह रहा था। खुद नरेंद्र मोदी भी ये बात नहीं कह रहे थे, क्योंकि पूरे मुल्क में घूमकर मैंने देखा कि लोगों में एक नशा सा सवार था, नरेंद्र मोदी के लिए एक पागलपन सा सवार था। इस मुल्क में पिछले 10 साल में इतना करप्शन हुआ है, गरीब लोगों की इतनी लापरवाही हुई है उनके तरफ, और इतनी इतनी मैं समझता हूँ कि बुरे ढंग से लोगों से बर्ताव किया गया है कि मजबूर हो के लोग एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी की तलाश में थे। उनको एक मजबूत आदमी चाहिए था, एक मजबूत नेता चाहिए था। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नरेंद्र भाई ने जो मेरा सपना था, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ जन दक्षेश यानी पीपल सार्क, जिसमें इन 16 देशों को शामिल करता हूँ, ईरान और बर्मा भी उसमें शामिल करना चाहता हूँ, उन सब देशों को उन्होंने दावतनामा भेजा है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भाईचारे के रिश्ते सारे इस्लामी मुल्कों के साथ बढ़ाएगी, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान के साथ ही नहीं, और जो खाड़ी के मुल्क हैं और जो दूसरे अरब ममालिक हैं उनके साथ भी। हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई का रिश्ता अटल जी के रिश्ते से भी और मजबूत होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े वसी उनका नज़रिया था मुल्कों के बारे में, इंसानियत के बारे में। सवाल पर कश्मीर के सवाल पर भी आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 महीने के चुनाव कैंपेन के दौरान एक बात ऐसी नहीं कही कि कोई कश्मीरी उस पर एतराज़ कर सके। आज कश्मीर की हर पार्टी, हमारे कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, हर कश्मीर की हर पार्टी ने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया है और उनकी इस बात की तारीफ़ की है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को दावतनामा भेजा है। मियां नवाज शरीफ भी जब पिछले साल में इस्लामाबाद में लाहौर में मुलाकात हुई, तब भी मैंने उनको बोला था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये साल भर पहले मैंने बिल्कुल ऐलान कर दिया था। और साल भर से उन्होंने भी अपना मन बना रखा है कि नरेंद्र मोदी के साथ वो एक बेहतर ताल्लुकात का नया एक सिपारा शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब ये शुरू हो गया है। हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ ना आ पाएँ, अभी उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि मुझे दोस्तों ने बताया।
जी जी,
मैं आज सुबह उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, शायद बात हो जाए रात तक। अगर उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं उनको आना चाहिए। और वो तो नेता हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उनको तजुर्बा है, इतने लंबे समय से लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं। उनको चाहिए कि पूरे जुनूबी एशिया को, पूरे हमारे इस इलाके को वो लीडरशिप दें, वो हम सबको बताएं कि भाई इन सब मुल्कों को जोड़ने के लिए क्या किया जाए, कश्मीर का मसला कैसे हल किया जाए, अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौजें वापस जा रही हैं तो वहाँ बदअमनी ना फैले, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर बदअमनी फैलती है तो ईरान और वो जो शुमाली इलाके हैं जो सोवियत संघ के पुराने इलाके हैं उनमें, पाकिस्तान में, भारत में, सब दूर बदअमनी फैल जाती है।
जी,
इसलिए मियां नवाज शरीफ को तो सोचना ये चाहिए कि सारे इलाके के वो सरबराह हैं और वो उस सरबराही के लिए हिंदुस्तान आएँ, उनका हम सब लोग इस्तकबाल करेंगे और ज़रूर उनके आने से एक ऐसा माहौल बनेगा कि सारे मामला हल होंगे। और जो बहुत बड़ी तकलीफ़ अब अपने देश के सामने आने वाली है कि अमरीकी की जाएंगे तो एक खला पैदा हो जाएगा अफ़गानिस्तान में, उस खले को भरने के लिए भी मियां नवाज शरीफ बात करें नरेंद्र मोदी से, दोनों भाई मिलकर कोई रास्ता निकालें, कोई तजवीज़ करें कि वहाँ पर ये दहशतगर्दी बंद हो। दोनों मुल्कों की दुश्मन अगर कोई चीज़ है, नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ है जो पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है हिंदुस्तान के बजाय, वो दहशतगर्दी है। उस दहशतगर्दी को भी मेरा ख्याल ये है कि बंदूक के जोर से ख़त्म करने की ही कोशिश नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्द लोग भी अपने लोग हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग थोड़ी हैं, उनसे बात करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। और मियां नवाज़ और उनके छोटे भाई शहबाज साहब, शहबाज भाई भी बात कर रहे हैं उनसे। जब पिछली बार मैं उनसे मिला, शहबाज जी से भी मिला, दोनों से मिला, और आसिफ जरदारी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो उसमें मैंने यही पाया कि ये नेता लोग, ये रहनुमा लोग अब बहुत पक गए हैं, बहुत मंझ गए हैं। इनको ये पता चल गया है कि जंग के ज़रिए अब हम मुल्कों का किरदार बदल नहीं सकते हैं, हमको मोहब्बत का रास्ता अपनाना होगा, ये तआवुन का रास्ता अपनाना होगा, और इक्तसादी मजबूती का रास्ता अपनाना होगा। ये जो मामलात हैं हमारे सियासी, ये भी हल करना होंगे। मैं इनको दरी के नीचे खिसकाने के पक्ष में नहीं हूँ कि सब मामलों को दरी के नीचे खिसका दो, नहीं नहीं, उनको सामने रखो, बात करो, और जो भी प्रैक्टिकल हल निकले उसको मानो। जब यूरोप मान सकता है सारी बातें, आपसी झगड़े सुलझा सकते हैं, ज़बरदस्त लाखों लोग मर गए वहाँ, ये जो दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बावजूद सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो हम तो एक फैमिली ही हैं। हम लोग तो अभी 200 साल पहले तक जिन सारे मुल्कों के मैंने नाम लिए, ये सब एक ही मुल्क थे, एक ही लोग थे। हम लोगों को एक होकर रहना चाहिए, मेरी दरख्वास्त ये है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजवाना साहब। जनाब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रवाबित में कांग्रेस की हुकूमतों के दौर में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं, और इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी तब भी नरमी और गर्मी आती रही है, लेकिन देखा यह गया है कि गैर कांग्रेसी हुकूमत जब हिंदुस्तान में बरसरे इक्तदार रही है तो दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बत बढ़ी है। हिंदुस्तान में इमरजेंसी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी हुकूमत बरसरे इक्तदार आई तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी वजीर खारजा बने, जिन्होंने पहला काम यह किया कि पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए, और फिर जब 1998 में बीजेपी की क़यादत में एनडीए की हुकूमत बरसरे इक़्तदार आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से दोस्ती की बस लेके लाहौर जाते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस हुकूमतों के दौर के मुकाबले में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों के दौर में दोनों मुल्कों के रवाबित में ज़्यादा फ़रोग नज़र आता है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान के बाज़ हलकों में तहफ़ुज़ात और ख़दशात पाए जाते हैं तो फिर आप क्या नहीं समझते हैं कि वो तहफ़ुज़ात और ख़दशात बेजा भी हो सकते हैं?
देखिए, अभी इस ख़दशात से जो आखिर में आपने बात ख़त्म की, इसी से शुरुआत करते हैं।
जी,
अभी प्रताप साहब फरमा रहे थे कि कुछ ऐसे भी पार्टी के अंदर या दूसरे एलाइज हैं जो नहीं चाहते कि बांग्लादेश की जो है अपना प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाया जाए, कुछ उनकी दूसरी पार्टियों के एलाइज या कुछ दोस्त नहीं चाहते कि वो जो है श्रीलंका के सरबराह को बुलाया जाए, और कुछ लोग नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया जाए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक जमहूरियत का उस भी है और जमहूरी तकाजे भी हैं, लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जो जो राय का या खदशात का या तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया है, साफ जाहिर है इलेक्शन के दौरान जो हमारे तहफ़ुज़ात थे, इलेक्शन कम्पेन के कुछ नारे, कुछ गुजरात के हिंदू मुस्लिम फसादात, इस तरह से, जबकि नरेंद्र मोदी साहब वहाँ के वज़ीर आला थे, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, मैं थोड़ा सा तारीख से पर्दा, तारीख करीब से यानी कि बिल्कुल जो अनकरीब जो अरसा गुजरा है, तो उससे मैं पर्दा ये उठा रहा हूँ कि उसकी वजह से तहफ़ुज़ात और खदशात ज़रूर है, मगर जिस फराग दिली से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें मुबारक दी, जिस फराग दिली से वाजपेयी साहब पहले आए, और आपकी इस बात से मैं कुछ इत्तफाक करता हूँ कि जब भी गैर कांग्रेसी हुकूमत हिंदुस्तान में आई तो उसी अरसे में वाजपेयी साहब जो है पाकिस्तान तशरीफ लाए, और अब जो है उन्होंने अपना नरेंद्र मोदी साहब ने दावत भी दी है हमारे वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने कहा कि आप हमारी हल्फ़े वफादारी की तकरीब में तशरीफ़ लाएँ। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से दुनिया अपना सफ़र कर रही है, अब वो जंगें, वो फसादात, वो इख्तलाफात, जिसकी नज़र ये आवाम चढ़ गई, दहशतगर्दी कहीं भी हो, अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में, हम उसको भी उसकी मजम्मत पुरजोर मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान में है उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसका शिकार हैं, मगर ये देखिए कि हमारे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने तालिबान से, टीटीपी से जो है ना वो हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन को चांस मिलना चाहिए, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में अमन है तो हिंदुस्तान में भी अमन है, अफगानिस्तान में भी अमन है, इस तरह से इस रीजन में अमन है। तो ये अमन जो है दहशतगर्दी और अमन का मुकाबला है, तो गुफ्तगुनी से ये दहशतगर्दी का हल भी इंशाल्लाह निकल आएगा, साथ साथ सारे मसले बैठ के टेबल पे हल हो सकते हैं बिल्कुल। और अगर ये मसले हल हो जाए तो इससे और भी हमारे ताल्लुकात प्रमोट भी होंगे और दुनिया इकोनॉमिक जो बूम है उसकी वजह से आप देखें कि मैं अभी पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के आने से चाइना को शायद महसूस हो रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इतनी ओपन होगी कि शायद लोग चाइना की बजाय फॉरेन इन्वेस्टर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हिंदुस्तान का रुख करें और गुजरात की मिसाल उनके दुनिया के सामने है। तो इसी तरह से हमारी भी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान से गुरबत दूर करें। और साथ ही ये बड़ी अच्छी बात की हमारे दोस्त ने कि जो अफगानिस्तान का इशू है विदड्रॉल ऑफ नेटो फोर्सेस के बाद वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उनके भी इलेक्शन का नतीजा आने वाला है, तो वहाँ पे ऐसी हुकूमत हो जो अफगान के लोगों की मतलब के मुताबिक होगी तो वहाँ पे पीस जो है अमन जो है अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस हुकूमत को मजबूत करना चाहिए, हमसायों का भी फ़र्ज़ है। इसी तरह से अफगानिस्तान की आने वाली हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखें, किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ताकि हर कोई अमन से रहे और ताल्लुकात में बेहतरी आए। और हमें उम्मीद है कि हम जो है ना, क्योंकि अब खदशात तहफुजात अपनी जगह पे, हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है कि अब नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में मामलात आगे बढ़ें और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम को इन मुसीबतों से, इस गुरबत से, इन क्राइसिस से, इस जो है ना बेरोज़गारी से निजात मिले और हम लोग तरक्की करें।
बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। जनाब ये सच है कि इमरजेंसी के बाद 1977 में जब गैर कांग्रेसी हुकूमत बनी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जिनका ताल्लुक जनसंघ से था, ये वहाँ के वज़ीर ख़ारजा बने तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हुए, और इसके बाद जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनती है और वाजपेयी साहब जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो दोस्ती की बस लेकर जाते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान क़ुर्बतें बढ़ती हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी कालम नवीसों ने जो बात लिखी है वो ये है कि बीजेपी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रवाबित ज़्यादा अच्छे रहे हैं, लेकिन उन हुकूमतों के यानी उस हुकूमत के सरबराह वाजपेयी थे जो शायर थे, अदीब थे, नर्म दिल थे और नर्म खू थे। नरेंद्र मोदी का मवाजना वाजपेयी से नहीं किया जा सकता और इन कालम नवीसों के बकौल नरेंद्र मोदी गर्म दल से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पिछले 50 साल से जानता हूं
जी।
वो इंदौर शहर में मेरे घर पर रुकते थे और नरेंद्र मोदी को भी पिछले 15-20 साल से मैं देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ। अटल जी से ज़्यादा मेरी नज़दीकी थी। मैं आपको एक बात कहता हूँ
जी
कि नरेंद्र मोदी भी अटल जी की तरह हैं, वो अटल जी से भी ज़्यादा नरम दिल साबित हो सकते हैं, लेकिन गुजरात में जो 2002 में हुआ वो एक ऐसा हादसा था कि उसमें मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। और उस वक्त एक जुमला जो मैंने लिखा और जो टेलीविज़न, सरकारी टेलीविज़न चैनल पे बोला, वो जुमला आज तक सारा मुल्क दोहरा रहा है। अटल जी ने कई बार उसको दोहराया कि गुजरात में राजधर्म का उल्लंघन हो रहा है, राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। राजधर्म का मतलब है राजा का धर्म, राजा का फ़र्ज़, राजा का फ़र्ज़ नहीं निभ रहा है। और इन्हें अब ये खुद कबूल की कि अगर उनसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो लोग उनको माफ़ करें। और आप अगर सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखें तो मालूम पड़ेगा कि नए नए ये हुकूमत में आए थे, 2-4 महीने इनको हुए थे, ये समझते ही नहीं थे कि काबू कैसे करना लोगों को। अगर काबू करने की हिम्मत होती, अगर कुछ तजुर्बा होता तो गुजरात जैसी भयंकर वो हादसा होता नहीं। वो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है, वो हमारे मुंह की कालिक है जो गुजरात में हुआ है। बहुत मैं तो शर्मिंदा हूँ उसको लेकर। लेकिन उस बात को पकड़ के अब पाकिस्तान के पत्रकार जर्नलिस्ट बैठ जाएं, मुसाफी बैठ जाएं, ये ठीक नहीं है। आप देखें उसके बाद कि पिछले 10-12 साल में क्या हुआ है, क्या एक भी बार दंगा हुआ है, क्या एक भी मुसलमान ने शिकायत की है कि गुजरात में उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है, उसकी लापरवाही हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। सब ने सबक सीखा है, दंगा करने वालों ने सबक सीखा है, कराने वालों ने सबक सीखा है, उसको चुपचाप देखने वालों ने सबक सीखा है, उसको भड़काने वालों ने सबक सीखा है। अब सब ने सबक सीखा है कि हम सब एक कुटुंब के लोग हैं, हमको मिल के रहना है, बड़े मोहब्बत के साथ और एहतराम के साथ रहना है। और जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सवाल है, या आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो बहुत पुर मोहब्बत आदमी हैं, वो बेहद नफीस आदमी हैं, उनकी तो कोई बराबरी नहीं है। मैंने 15 दिसंबर 2013 को एक मजमून लिखा था अखबारों में, जो बहुत पढ़ा गया, उसमें मैंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी के शरीर, मोदी के तन में अटल जी के कल्प का, उनकी अटल जी की आत्मा का प्रवेश कराए, जब तक अटल जी की आत्मा मोदी के नहीं जाके बैठती है।
बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब, हमारे पास वक्त कम रह गया है। रजवाना साहब, हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त है, क्या आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जानशीन साबित होंगे? 1.5 मिनट का वक्त है हमारे पास।
लेकिन जिस तरह उनके बारे में अपने जाति ताल्लुकात के हवाले से और उनकी नेचर के बारे में हमारे दोस्त बता रहे थे, सीनियर सहाफी, वो बेहतर समझते हैं, हम तो यहाँ सिर्फ मीडिया के जरिए पता चलता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, पिछले जख्म भर जाएं और आने वाले जो हैं बहारें खिलें, फूल खिलें दोनों मुल्कों के लिए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें दोनों मुल्कों को मौका दे कि हम इस तरह गुलदस्ते की तरह बन के रहें और अपने मसाइल गुफ्तगुनी से हल करें, ताकि कोर इशूज भी ख़त्म हो जाएँ, उनका कोई बेहतर हल निकल आए और ये मुल्क जो है आपस में दोनों मिलकर तरक्की करें, दुनिया में अपना नाम पैदा करें, दुनिया को दिखाएं कि हमने अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म कर दी, बल्कि वी आर बरीड अवर हैचर्स, यानी कि अपनी खुलाड़ियाँ हमने दफन कर दी, जो एक मिसाल है, वी आर बरीड अवर हैचर्स। तो मैं आई एक्सपेक्ट, मुझे तवक्को है इंशाल्लाह अपने रब ताला से, खुदा से ये तवक्को है कि अल्लाह करे ये बातें दुरुस्त साबित हों और ये खदशात और तहफ़ुज़ात जो हैं इन पर जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएँ और ये ऐसी सबूत सामने आए, ऐसी बातें सामने आएँ, ऐसे नताइज सामने आएँ और इस तरह से कामयाबी से दोनों हुकूमतें चलें और अपने ताल्लुकात बेहतर करें, कि दोनों मुल्कों की आवाम खुशहाल भी हो, तरक्की की मनाजिल तय भी करें और उनको चेंज महसूस हो। क्योंकि मैं अखबारों में पढ़ रहा था, टीवी में मैं देख रहा था, उधर टर्की में इंडिया की कैंपेन में, कि इनको कहा गया नरेंद्र मोदी साहब को वन मैन आर्मी, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, वन मैन आर्मी, यानी कि इतने वो मकबूल लीडर हैं कि एक आदमी की अपनी आर्मी थी और उन्होंने इतनी मेहनत करके जो है ना ओवरवेलमिंग जो है ना लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। हमारी दुआएं इनके साथ है।
बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब, और इसी के साथ वैद प्रताप वैदक के भी हम शुक्रगुजार हैं, दोनों तजिया निगारों के ख्यालात आपने मुलाहिजा फरमाया। बहरहाल जहाँ पाकिस्तान में हिंदुस्तान की आइंदा हुकूमत के ताल्लुक से बाज़ कालम नवीसों ने बाज़ खदशात और तहफ़ुज़ात का इज़हार किया है, वहीं एक ऐसे कालम नवीसों की तादाद भी कम नहीं है जिन्होंने अच्छी उम्मीदों का इज़हार किया है, और बाज़ हलकों ने तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की नई हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत से भी आगे बढ़कर कुछ बातें लिखी हैं, और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि हिंदुस्तान में इससे पहले जब बीजेपी की हुकूमत थी तो इस्लामाबाद और दिल्ली एक दूसरे से ज़्यादा करीब आए, तो कोई वजह नहीं है कि अब जो हुकूमत आने वाली है इसमें दूरी बढ़े। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।